नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।